الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود بھیجو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا تم کوئی چیز خریدتے ہیں یا ہم کوئی چیز بیچتے ہیں، دونوں الگ الگ ٹاپک ہے۔ خریدنا خود ایک ٹاپک ہے، بیچنا خود ایک ٹاپک ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خریدنے پر ہے، خریداری۔ کہتے ہیں مارکیٹ میں جیت اس کی ہے جس کی خریداری مضبوط ہو۔ سب سے بزنس پوائنٹ آف ویو پہ اگر دیکھیں تو جس کی خریداری اچھی ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ سروائیو کر جاتا ہے، اور جس کی خریداری کمزور ہے وہ مارکیٹ میں بعض اوقات کمزور پڑ جاتا ہے۔ لیکن اب خریداری کا تعلق صرف بزنس سے ہی تو نہیں ہے، آپ روزمرہ گھر کی چیزیں بھی خریدتے ہی ہیں، سبزی خریدتے ہیں، اناج خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، جوتے خریدتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں، چائے بھی خریدی جاتی ہے پینے کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم سیزنل جاتے ہیں تو قربانی کا جانور بھی خریدا جاتا ہے وہاں، بھائی ٹھیک ہے بیچنے والا اپنی جگہ پر، لیکن بات اس وقت ہو رہی ہے خریدار سے۔ آج ہم چونکہ تجربات کی دنیا پروگرام لے کر بیٹھے ہیں، اور یہ اسپیشلی طور پر بزرگوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یہ پروگرام، اور بزرگوں کی مینٹیلیٹی، بزرگوں کی سوچ، بزرگوں کے تجربات کو ہم یہاں پر بعض اوقات آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں سے اگر بات کرتے تو کہتے ہیں کہ میاں کیا اتنا مہنگا لے کر آئے ہو، تو اب ان کو کہیں کہ بابا جی آپ کے دور میں جتنے کی مرغی ملتی تھی آج کے دور میں اتنے کا انڈا نہیں ملتا، کہاں سے لائیں، نہیں تو میں خریدنا نہیں آتا۔ تو کیا واقعی خریداری تبدیل ہو چکی ہے، یا واقعی آج کے خریدنے والے نوجوان کو خریدنا نہیں آتا، اس کے کسی تجربات میں کمی ہے؟ اچھا، خواتین کے خریدنے کا انداز بالکل انوکھا نرالا ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ اگر مرد خریدنے جائے تو بسا اوقات آدھے گھنٹے میں، دو گھنٹے میں بہت ساری چیزوں کو خرید لیتا ہے، اگر کوئی عورت جائے تو صبح ہو جاتی ہے تو رات تک واپس آتی ہے اور خریداری بھی پوری نہیں کرتی۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت بارگیننگ بہت کراتی ہے خریدنے میں، مگر نقصان پھر بھی اٹھاتی ہے کیونکہ بیچنے والا اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں مطلب کنفیوز کرتی ہیں بعض اوقات کہ اصل ہے کیا حقیقت۔ تو بات کرتے ہیں اصل ہے کیا حقیقت، کیا خریداری تبدیل ہو چکی ہے، خریدنے والے کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے، یا خریدتے وقت جو بارگیننگ ہوتی ہے کیا اس بارگیننگ کا بھی کوئی پہلے اور آج کے دور میں کوئی فرق ہے، یا پھر یہ کہ وقت بہت ضائع ہوتا ہے خریدنے میں، پہلے وقت کم ضائع ہوتا تھا آج وقت زیادہ خرچ کر لیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ملی جلی سی گفتگو ہے تاکہ ہماری خریداری اچھی ہو، مضبوط ہو۔ یہ بات درست ہے کہ خریدار ہو یا بیچنے والا ہو یا تقاضا کرنے والا ہو، سب کے لیے آسانی کرنا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک ان سب پر رحم فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہمارے پیش نظر رہے، اللہ پاک رحم فرماتا ہے کن پر، جو خریداری میں، بیچنے میں اور تقاضا کرنے میں جو آسانی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس پر رحم فرماتا ہے۔ مگر ہمارا موضوع بیچنا نہیں ہے، خریدنا ہے۔ یہ ہماری ایک لائن ہے جو میں اپنے اسلام بھائی سے عرض کروں گا، ہمیں اس لائن پہ رہنا ہے۔ خریدنے کو آج آپ کیسے دیکھتے ہیں ماضی سے لے کر اب تک؟
میں نے اس پر جو غور کیا ہے سب، اس میں یہ ہے کہ میرے نزدیک اس میں کم از کم چار افراد آئے جو خریدنے والے ہیں۔ اس میں ایک وہ ہے جو مال بیچنے کے لیے خریدتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو کسی ادارے کے لیے، ویلفیئرس کے لیے، کوئی بھی اس کے لیے پرچیزر ہوتا ہے، اور تیسری خریداری وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، استعمال کے لیے لیتا ہے، اور چوتھا جو ہمارے یہاں مارکیٹ میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ بروکر بھی ایک طرح سے کسی کا خریدار ہوتا ہے، جو میں نے
کسی کے بیہا پر وہ خریدار ہوتا ہے۔
اس میں چار چیزیں جو مجھے نظر آئیں۔ اب اس میں پہلی جو ہے، جو مال بیچنے کے لیے خریدتا ہے، اس میں جو میرا ذاتی جو مشاہدہ گزرا ہے وہ یہ کہ پہلی خریداری سے لے کر आखिरी बिल्कुल लास्ट जो कस्टमर आता है जिसको कहते हैं, जो घर से ख़रीदने के लिए निकलता है, वो कोई भी चीज़ ले उस तक बेचने का, यानी मिसाल के तौर पे कोई चीज़ हम 70 रुपये की ख़रीद रहे हैं, तो क्या मैं ये समझता हूँ कि वो चीज़ 105 रुपये की आखिरी कस्टमर बेच सकेगा, कि उसने 70 की ली, उसने 75 की दी, 75 उसके उसके एक्सपेंस आते आते एक एक किलो की जो वो चीज़ बिकेगी या एक एक चीज़ बिकेगी तो 10-15 रुपये नॉर्मली वो नफ़ा रखते हैं। एक तो ये उसकी यहाँ ख़रीदारी अगर अच्छी होगी, जो आपने पहले ही कहा कि उसकी खरीदारी अच्छी होगी तो माल बेचना आसान होगा,
आसान हो जाता है।
और उसमें यही होता है कि
प्रॉफिट भी वो अपनी मर्जी का ले लेता है।
इसमें यही देखा है कि एक कंपनी में 4 पार्टनर भी हों या 2 भाई एक दुकान पर बैठते हो, तो जो असल परचेज कर लेना तो उसके बाद उसके लिए ग्राहक को बेचना बहुत आसान है,
खरीदने को आधी अक्ल का आ गया।
और इसमें ऐसा भी, इसमें 2 चीज़ें देखी जाएंगी, एक तो ये कि क्वालिटी और रेट, ऐसा ना कि सस्ता खरीदा मगर क्वालिटी उसने अच्छी ना खरीदी, और क्वालिटी भी लेनी है और रेट भी लेना है। दूसरा ख़रीदार जो है वो अगर किसी इदारे का है तो यहाँ मैं सबके लिए मशवरा दूंगा, क्योंकि वो मुसलमान
वेलफेयर के लिए खरीदता है, मस्जिद के लिए खरीदारी कर रहा होता है।
इसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो ये कि वो आप ही कहते हैं ना, उलमा फरमाते हैं कि जो मुसलमान वो जो अपने लिए पसंद करे अपने भाई के लिए पसंद करे, तो इसमें ये नज़र आता है जो देखा गया है कि जो वो ख़रीदने के लिए आया तो आया कि वो जैसे मैं माल अपने लिए ख़रीद रहा हूँ तो मैं उसमें अपनी सारी सलाहियतों को बरोए कार लाता हूँ कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, और उसमें मेरी आंखें भी खुली रहती हैं, मैं इसके 4 आदमी से पूछता भी हूँ, मशवरे भी लेता हूँ। लेकिन जो किसी कंपनी का हो, किसी इदारे का हो, अगर वो उसमें आशना नहीं है, उसको आशनाई नहीं है ख़रीदारी का, उस फील्ड की जो माल वो ख़रीदने जा
रहा है
परचेजर, तो फिर यहाँ होता ये कि उसको एक नुकसान पहुँचता है, वो किसी भी इदारे का अच्छा वो जाता है। अच्छा इसमें 2 चीज़ें,
या तो उसको चूना लगा रहा होगा या इदारे को चूना लगा रहा होगा।
अच्छा इसमें 2 खराबियां भी आ जाती हैं, एक तो ये कि जो बेचने वाला बायर होता है तो उसमें ये देखा गया है कि जब वो देखता है किसी फर्म के किसी इदारे का या कोई वो है तो वो उसके लिए कोई ना कोई तरकीबें करता है, और बिलाखिर कई ऐसे लोग हैं जो उसमें फंस जाते हैं, और फिर वो माल तो दे रहा होता है, बिल कंपनी को जा रहा होता है, लेकिन इसके पीछे कई कहानियां जो है नजर आती हैं।
तो मेरे एक दोस्त हैं, इनकी फैक्ट्री है, उन्होंने मुझे पिछले दिनों ही बताया कि ये इनका जो परचेजर था तो इनको ख्याल आया कि यार आज मैं जाकर परचेजिंग करता हूँ। अच्छा वो खुद ऑनर था, दुकानदार को तो नहीं पता था कि सेट खुद आया खरीदने के लिए, इन्हीं दिनों की बात है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं मार्केट में गया, बोला मैं फर्स्ट टाइम उस होलसेल मार्केट में गया, मुझे मेरी परचेजिंग करनी थी, एसेसरीज वो खरीदते थे, तो जब मैंने परचेजिंग चीज सामान परचेस कर लिया तो कंपनी का नाम वगैरह दिया, तो उसने कहा कि कितने का बिल बनाओ, और इससे क्या बोला था कितने का बिल बनाओ, बोला बताएं कितने का बिल बनाओ। तो उसको फिर ख्याल आया कि यार ये जो हमारे जो मैं तो सेठ हूँ, मैं मुझे क्या जरूरत है इतने का बिल बनाओ इतने का बिल बनाओ, लेकिन यार क्या पता कि मेरी फैक्ट्री के अंदर क्या कुछ हो रहा होगा या मेरे इदारे में क्या कुछ हो रहा होगा। तो ये इस तरह हो जाता है कि जब इदारे के लिए बंदा खरीदने के लिए जाता है तो आपने सही कहा कि उसको फिर ऑफर भी हो रही होती है।
भाई साहब इसमें मसला ये है कि बाज़ कंपनियाँ तो ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, वहाँ अगर परचेजर को यह कहा जाए ना कि तेरी कोई तनख्वाह नहीं है, ठीक है,
तो भी
वो नौकरी कर लेगा, वो बोलेगा जिस रेट में आप लेते थे मैं उसी रेट में आपको दूंगा, बस तो मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, तो भी उसका घर निकल रहा है। क्योंकि यहाँ माशरा इस तरह का हो गया है कि लोग इस पर कमीशन रखते हैं, बीच में लेने वाला भी और देने वाला, ये दोनों इसमें एग्रीड होते हैं। और दूसरा जो आपने कहा ना कि जो डिफरेंस किया है, जो मेरा नजरिया है डिफरेंस का, वो मनी रिवेल्यूशन है। क्योंकि आज के नौजवान नस्ल के पास जो इनकम है, इनकम जो आना है इसके मुताबिक वो झट से खर्च कर देते हैं, तो जो इसके बाप ने जिस तरह कमाया होगा वो इनको ये नहीं पता होता,
इजी कमिंग इजी गोइंग।
हाँ तो इसी तरह आप आजकल के बच्चों को पूछेंगे, बच्चे आपको करोड़पति अरबपति मिलेंगे, किसी जमाने में आपने सुना होगा 22 खानदान थे सिर्फ लखपति, आज उस 22 खानदान या 2200 खानदान भी नहीं मिलेंगे जो आपको करोड़पति अरबपति मिल जाएंगे। इसमें वजह यही है कि हमारी डीवेल्यूशन हो गई, हमने जो कमाया
पैसा
नीचे बहुत आ गया,
बहुत नीचे आ गया,
जिसकी वजह से खरीदारी, और आजकल दिखावा बहुत है न्यू जनरेशन के लिए, खास करके बोल रहा हूँ,
शो ऑफ
बहुत है कि ब्रांड कॉन्शियस हो गया है कि इस वजह से हमें ये चीजें चाहिए। वरना मुझे पता है आपने भी नेट का काम किया है किसी जमाने में, ठीक है, निट की एक टी शर्ट में मैक्सिमम कौन सा यान लगता है, कौन सा इसका प्रोसेसिंग होता है, कितने की कॉस्ट आएगी,
हमें रिक्पिक सब पता था।
हाँ पता पता है, ये बता
हमें डैंग के प्राइस पता,
तो पता है सब पता होता है। अब हमें पता है कि इसकी कॉस्ट मैक्सिमम कितनी आती है, और हमें पता है कि ब्रांड में जाने के बाद 10 गुना 15 गुना ज्यादा रेट में भी वही चीज मिलती है,
खाली लेबल का फर्क है।
लेबल का फर्क
असल में ब्रांड जो है ना, मेन तो टॉपिक नहीं है, ब्रांड के ताल्लुक से जो मेन जो थ्योरी है ना वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रांड बेसिकली जरूरत नहीं है, ब्रांड एक रिक्वायरमेंट इस तरह की हो गई कि ब्रांड आपकी पहचान बन जाती है। लोग ब्रांड अपनी पहचान के लिए लेते हैं, जरूरत के नहीं लेते। आप घड़ी ले लें तो घड़ी की जो हर तरह की घड़ी आती हैं, लेकिन बाज घड़ियाँ महंगी आती हैं, तो टाइम तो दोनों दिखाती हैं, लेकिन वो घड़ी सिर्फ टाइम के लिए नहीं पहनी जाती, वो अपनी शख्सियत की पहचान के लिए ले जाती है। तो बहुत सारे ब्रांड्स जो यूज़ किए जाते हैं वो बेसिकली अपनी शख्सियत, अपने स्टेटस की पहचान के लिए किए जाते हैं, जो अगर शरण उसमें कहीं कोई ख़राबी नहीं आती तो उसके ऊपर कोई क्या कलाम करेगा। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए होता है कि फिर वो ले रहे होते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पहले जो ख़रीदारी होती थी वो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पर होती थी, और अब जो ख़रीदारी होती है उसकी थोड़ी सी नौीयत तब्दील हो गई है। तो आप दूसरे टॉपिक पर थे,
जिस वक्त मैं कारोबार करता था तो लोग आके मुझे बिल बढ़ाकर बनाने का कहते थे, लेकिन मैंने कभी ना ऐसा किया ना मुझे करना था। और बसाहिर लोगों को ये होता है कि जो कि यार इसमें घाक चला जाएगा अगर ये मुझसे,
ये मेरे सुना तक जो अपनी बात की है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अल्ताफ भाई, आपको तो याद 50-55 साल पुरानी बात की होगी, कम से कम 50-55 साल पुरानी बात की होगी, मतलब बिफोर द दावत इस्लाम ही आप कह सकते हैं। तो 50-55 साल पुरानी जब बात की होगी तो 50-55 साल पहले जो एक कल्चर था,
उस वक्त भी लोग कहते होंगे
ठीक है, वो भी कल्चर आज है, यानी कि कौवा कल भी काला था कौवा आज भी काला है, कौवा तो जहाँ भी है काला ही है, ऐसा तो नहीं होता 50 साल के कौवा सफेद हो जाएगा, कौवा तो काला ही रहेगा।
अब इसमें अमीर सुन्नत का जो जुमला था ये हम सब के लिए कि उस वक्त अगर मैं ऐसा करता और आज मैं आपके सामने हूँ, क्या अल्लाह करीम ने मुझे वो नेमतें नहीं अता फरमाई,
मुझे मेरा पेट भर गया, मैं मतलब के दो निवाले बच जाते हैं और हम सब के निवाले बच जाते हैं। तो खैर ये तो एक लालच का एक टॉपिक हो गया, लेकिन अब ये जो खरीदारी करने के लिए जो अल्ताफ भाई जाते हैं, आपने प्राइवेट खरीदारी भी की है मैं आपको जानता हूँ, और आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी खरीदारियाँ की हैं मैं आपको उसमें भी जानता हूँ, यानी कि आपकी खरीदा अच्छा आपने वो पर्सनल खरीदारियाँ भी की हैं, और आपने ऐसी खरीदारी की है कि वो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। हमने साथ काम किया है, मैंने अल्ताफ भाई ने, मैंने अल्ताफ भाई से काम करना सीखा भी है, कारोबार करना, कारोबार की फील्ड में है तो मैं इनकी दुकान पर जाया करता था। आप जब खरीदारी कर जाते थे, हम तो आप वो तजर्बात की दुनिया है, अपने बिजनेस के लिए खरीदारी करने गए एक, वो मुझे आपका कारोबार पता है, आप घर के लिए खरीदारी करने गए दो, उसका मुझे पता है, और आप इदारे और तंजीम के लिए या किसी भी एनजीओ के लिए आप खरीदारी करने के लिए गए, ये तीन खरीदारियां तो मुझे आपकी पता है ठीक है। अच्छा फिर घर बना, फिर अपना पर्सनल खरीदारी करने के लिए गए, बच्चों की खरीदारी करने के लिए गए या किसी और के लिए खरीदारी करने, आप इन तमाम खरीदारी को किस तरह देखते हैं, यही सवाल अब्दुल कादिर भाई मैं आपकी तरफ आऊँ। अब्दुल कादिर भाई जॉब करते थे तो ये जॉब से बिजनेस की तरफ गए हैं अब्दुल कादिर भाई, ये सबके अपने अपने जुदा जुदा एक्सपीरियंस है जिसके साथ हम बैठे हुए हैं।
कंस्ट्रक्शन का काम है और जो मकान बना के बेचने का भी होता है, तो उसके अंदर लोग आते हैं ना, चंद चीज़ें याद करके आते हैं कि भाई आपने स्टील कौन सा लगाया, आपने सीमेंट कौन से ब्रांड की लगाई है, आपने कलर कौन से ब्रांड का लगाया है, या सैनिटरी आपने लगाई है तो कौन से ब्रांड की लगाई है, टाइलें लगाई है तो कौन से ब्रांड की लगाई है। हालांकि अभी ब्रांड ज़रूरी नहीं है, अब आजकल तो इतने ब्रांड हो गए, बल्कि अब तो लोग अपने तौर पर मुख्तलिफ अपने नाम से बना के ले आते हैं बाहर से, जैसे लाइटें हम ले, लाइट की मिसाल यही वाली लाइट है, ये मुख्तलिफ लोग अपने नाम से ले आते और मुख्तलिफ प्राइस पे बिकते। इसमें ख़रीदार के लिए है कि वो देखे कि उसकी क्वालिटी कैसी है और उसमें पैसों में कहाँ से कम,
मतलब ब्रांड से रेट तब्दील हो जाता है,
ब्रांड से रेट तब्दील होता है।
आप एक जैसे आपने उसका मिसाल दी, आप एक टाइल लेते हैं ठीक है, फॉर एग्जांपल आप स्पेन की टाइल लेते हैं, लोग इंपोर्टेड टाइलें जो लेना पसंद करते हैं, तो स्पेन की भी है, इटली की भी है, मुख्तलिफ ममालिक की टाइल्स होती हैं। अब वो जो टाइल की कंपनी वो एक ही है, मेरा अपना एक ब्रांड है, मिसाल के तौर पर इमरान टाइल, अब्दुल मजीद टाइल, अल्ताफ टाइल, कादरी टाइल, जो भी एक टाइल का नाम ले लें, अच्छा उसका आर्टिकल नंबर एक ही है,
सही
ये मैं आपको बता दूं,
सही है
ये मुझे पता है, उसका सेम आर्टिकल है, लेकिन जब वो इमरान टाइल की बनाएगा तो चूंकि अब उसके ऊपर उसी सेम आर्टिकल है, कोई इसके अंदर मटेरियल में फर्क नहीं है ना, फिनिशिंग में फर्क है। ये मैं आपको बिल्कुल जो बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि इस पर इमरान नाम लिखा हुआ है तो उसके रेट अलग होंगे, इस पर जानी टाइल लिखा हुआ है तो उसके रेट अलग होंगे, उसके ऊपर कादरी टाइल लिखा हुआ है तो उसका रेट अलग होगा, उसके ऊपर अब्दुल मजीद टाइल लिखा हो तो उसका रेट अलग होगा, इस सबके रेट अलग होंगे। जबकि अच्छा खरीदार को ये नहीं पता, खरीदार बोलेगा कि यार मुझे फला नाम की टाइल दो, तो उसे फला नाम की टाइल देनी है और लेकिन उसके रेट अलग होंगे। तो ब्रांड तब्दील होने से सम टाइम, देखिए मैं 100% में बात नहीं करूँगा, ब्रांड तब्दील होने से सम टाइम क्वालिटी तब्दील नहीं हुई होती, नाम रेट बदल देता है। और ये अगर खरीदार को पता नहीं है ना तो खरीदार मार खा जाता है। ये मैं आपको बता दूं, अब जैसे ये कह रहे हैं कि ब्रांड, तो अब ये जहां घर बनाते हैं ना वहां ये सारी ब्रांड की बात है। अब जहां अब्दुल मजीद भाई रहते हैं वहां अगर वो घर बनाएगा तो उस घर बनाने वाले को पता ही नहीं होगा कि ब्रांड क्या है ना ब्रांड क्या। ये सही है, ये इलाकों के साथ भी वेरी कर रहा होता है, ठीक है, आपको पता होगा, ये इलाके के साथ भी वेरी कर रहा होता है कि आप किस इलाके में रहते हैं। तो वहां अच्छा बाद इलाके थे जहां पर बोलो कौन सा ब्रांड चाहिए, बोले ब्रांड नहीं चाहिए, ब्रांड कौन सी नई कंपनी आई है, वो ब्रांड को भी कंपनी बोलेगा ना, ये ब्रांड कौन सी नई कंपनी, हमने तो ब्रांड कोई कंपनी नहीं सुनी है, तो ब्रांड टेक्सटाइल भी कोई आ गई है, तो ये नहीं होता। तो ये अलग अलग जगहों की अलग अलग चीजें होती हैं। अल्ताफ भाई आपके पास जो मैंने 3 सवाल लिखे हैं,
हमें यहाँ मार्बल की जरूरत थी
फैजान मदीना
जी, तो मुझे कहा गया कि मार्बल लेना है। अब मैंने मार्केट में मालूम की कि मार्बल किस तरह बिकता है, तो स्क्वायर फीट से बिकता है, मोटा होता है, सेक्शन होता है, ये हो और ये निकलता है तो टन के हिसाब से। तो मैं चार इस्लामी भाई हम कहीं गए थे, मैंने एक 12x12 की मार्बल पकड़ा, उसका वजन कर लिया तो 5 किलो वजन निकला, तो मैंने बोला 200 फीट आ गया एक टन में। मेरे को बोलते अब दुकान से निकलो, बाहर नहीं बेचना आपको,
तो पहाड़ों की खरीदारी के लिए निकले
आपको सुना रहा हूँ ये वाला। जब दुकानदार ने बोला नहीं भाई कोई मार्बल कभी किलो का बिकाए आप करते हुए काम,
तो आपको किलो से खरीदने का तजुर्बा था ना।
जब फिर मैंने मालूम की थी, अल्लाह पाक का करम हुआ, ये मुर्शिद की निगाह करम थी, और काम ऐसा था कि मेरा पर्सनल काम नहीं था, तो अल्लाह ने उसकी राहें भी खोल दी। अल्लाह का शुक्र है कि हमने
ये टेक्सटाइल में थे
हाँ,
मगर उस वक्त दावत इस्लामी ने इनको कहा कि फैजान मदीना का मार्बल आप खरीदें। अब ये मार्बल खरीदने के लिए जब गए ना, तो वहां पर दावत इस्लामी को जो फायदा हुआ ना, ये इनकी परचेजिंग एक्सपर्टिस की वजह से फायदा हुआ।
जी बिल्कुल, हमने फिर मैंने मार्केट में मालूमात की, तो हमें उस टाइम पे 27 रुपीस 12x12 की एक चौकी मिल रही थी स्क्वायर फुट। अब मैंने बोला कि हमारे को तो मार्बल भी बहुत चाहिए, इतना तो कोई देगा, बीच में से फिर रेट बढ़ाएंगे और माल कम कर देंगे। हमने कहीं कोशिश की, वड एक शहर है बलोचिस्तान का, वहाँ से मैंने पार का एक छोटा सा हिस्सा बोला कि मैं वहाँ से ये माल लूँगा। फिर वहाँ से हम ब्लास्टिंग करते थे, वो पत्थर निकालते थे, पत्थर ये मिलता था टन के हिसाब से, तो ये 20 टन 25 टन 40 टन के पत्थर आते थे जिसको हम लाते थे। फैक्ट्रियाँ होती थी जो मजदूरी पे माल काटती थी, फिर उससे माल कटवाते थे।
अभी यहाँ गोलीमार की तरफ है
जी जी, अभी तो खैर साइड में मैंने कराया, तो साइड में बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, इसमें गेंगशा और एक वर्टिकल दो मशीन आती हैं हमेशा, उसको अल्लाह का शुक्र है कटवाते थे। हमने 4x12 का पीस 20 रुपये के कॉस्ट में कराया, जो कि 4x12 यानी कि 1 फुट बाय 4 फुट का एक पीस 20 रुपये फुट के हिसाब से, और जो मुझे मार्केट में 55 रुपये से 60 रुपये उस टाइम पे मिलता था मोटा 1 इंच का, वो हमें 20 रुपये की कॉस्ट आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये याद है जो कॉस्ट आई थी, और इसके बाद भी इसमें एक नीचे टुकड़ा बचता है, इसको तलिया बोलते हैं, उस टुकड़े में से हम पीस बनाते थे छोटे 4x4 4x8 इस तरह करके, वो पीस भी आते थे जो अपने पिलरों पे लगे हुए, वो सेक्शन करके हम लगाते थे।
हमारे फुट बाय 4 फुट के लगे हुए हैं, बार फिर 2 फुट बाय 1 फुट के लगे हुए हैं,
इस तरह
से डिवाइड करके फिर इसके बाद
1,30,000 स्क्वायर फुट माल चाहिए। फिर इसके बाद में मालागोर गया, जहाँ मैंने व्हाइट मार्बल खरीदा था वो मालागोर से खरीदा था, वहाँ जाके वहाँ से फिर वो बाई रोड हम लाते थे, वो पत्थर नहीं खरीदते थे, माल खरीदते थे। इस तरह मतलब मैं जैसे मैंने आपको बोला ना, मतलब आदमी जहन लगाए ना मुझे क्या लेना है।
अब्दुल मजीद, ये जो आपने जो सवाल किया था ना, देखो ये वही है कि ये हालांकि अपनी खरीदारी के लिए, अच्छा इनकी अपनी खरीदारी मुझे पता है, अच्छा इनकी अपनी खरीदारी जो है ना वो दिलेरी है, ये अपनी खरीदारी में इतनी कर्कशता से काम नहीं लेगा, ये मुझे इनके बिजनेस का पता है। मगर चूंकि एक चंदे का माल था, वफ का माल था, अल्लाह के लिए काम था, मस्जिद के लिए था, और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के लिए था। दूसरी बात प्यारे इस्लाम भाई, जो एतमाद, यानी ये मैं आपको बता दूँ, चाहे वो आप अपने कंपनी के लिए खरीदें या अपने आप मस्जिद के लिए खरीदें, आप पर जो भी आपको खरीदने के लिए भेज रहा है वो आप पर एतमाद ही तो कर रहा है यार। सबसे बड़ा बात एतमाद है, और अगर आप किसी का एतमाद तोड़ देते हैं ना तो आप, आपके अंदर कोई भलाई नहीं है, यूं समझा। अगर आप किसी का एतमाद तोड़ते तो आप पे भलाई नहीं है, चाहे वह वालिद ही का एतमाद क्यों ना तोड़ दें। आप एतमाद नहीं तोड़ा जाता, यानी वालिद भी अगर अपने बेटे को बेचता है ना, बेटा ये चीज़ खरीद के ले आओ, तो बाप भी उम्मीद करता है कि बेटा दो पैसे बचा कर लाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उड़ा कर नहीं ले आएगा, फेंक कर नहीं ले आएगा कि यार बाप की कमाई है ना, क्या फर्क पड़ता। तो बाप ने कोई मतलब के बैठ कर थोड़ी हुई, मतलब के गरीब, मतलब के वो, मतलब वो इस तरह पैसे कमा लिए, उसे मेहनत की है तब जाके उसे दो पैसे कमाए। नेकी के काम के लिए जब, या किसी भी इसी तरह के किसी ऑन दी बिहाफ ऑफ समबडी, जिसमें आप ब्रोकर भी शामिल है, ये सही कह रहे अब्दुल मजीद भाई कि समटाइम ब्रोकर ऑन दी बिहाफ ऑफ यू, वो मार्केट में जाकर वो बाय करता है चीज़ों को, और वो आप उसको कहते हैं। इसी तरह अजी वो रियल इस्टेट में है कि यार आप ले लो, तो अगला बोलता है कि यार कितने तक में खरीद आपको पड़ेगा, बोला यार ले लो यार करोड़ सवा करोड़ में, करोड़ सवा करोड़ तक मैं कर लूँगा। अच्छा, अब उसको पता है कि सवा करोड़ तक वो पार्टी तो तैयार है, जो खरीदने वाला है वो खरीद एक करोड़ में रहा है, और उसके साथ वो डील ऐसी बनाता है कि उसे सेट एक करोड़ बीस में पांच लाख बचा लिए मैंने, वो पांच लाख उसे बचाए नहीं, उसे बीस लाख की डंडी मारी है, बीस लाख का धोखा दिया है। अब ये धोखा देते हैं ये लोग,
टाप लगाते ना, टाप लगाते, टाप बोलते
हैं, टाप बोलते
हैं, बोलते हैं,
ये धोखा देते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं। अच्छा, आप बोले यार नहीं झूठ किया, उसे तो सवा लाख का मेरे को ऑफर की थी ना, सवा करोड़ की, तो आप उसको बता दो ना, आप बताओगे नहीं, बल्कि जिससे आपने खरीदा है उसके लिए आप उसको भी, उसके भी मुंह में हड्डी डालोगे कि यार तू भी कहीं मतलब कि बोल बोल नहीं देना कि मैंने दो पांच लाख रुपए ले, ताकि मतलब तेरे मुंह से भी कुछ निकले नहीं, तो हम दोनों मिलकर धोखा देंगे। तो ये याद रख लीजिए, आप दुनिया में कहीं भी अगर ऐसे खरीदार हैं, ऐसे परचेजर हैं कि जिस पर आप किसी ऑन दी बिहाफ ऑफ समबडी, किसी के बिहाफ पर या कंपनी के बिहाफ पर, जैसे इस वक्त हम पाकिस्तान में बैठ कर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड या आउट ऑफ द सिटी, कोई भी कहीं भी आप लैंड परचेस कर रहे होते हैं, तो आपको कोई कह रहा होता है यार आप मेरी जगह पर परचेस कर लेना, फ्लैट परचेस कर लेना, तो आप गोया कि उसने आपको अपना वकील बनाया है, उसने आप पर एतमाद किया है। आप उस खरीदारी में, उसको बताएं नहीं, खरीदारी में सिर्फ पैसे बचाना ना बचाना नहीं है, मेरे नज़दीक खरीदारी में एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है आप एतमाद ना तोड़ें किसी का, बल्कि आप उसको ये, अच्छा ये अल्ताफ भाई, आप अब्दुल कादिर भाई, बिजनेस ही कितनी बड़ी चीज़ है, आपने भी जब आप जॉब करते थे तो कुछ भी आप ऑन द बिहाफ ऑफ योर सेट आप परचेस करते थे, एम आई राइट? कोई भी चीज थी जो आप परचेस करते, मुझे पता आपका बिजनेस क्या था, आप परचेस करते थे। अच्छा, परचेस में आप पर कितना भरोसा था कि आप बोलोगे मैंने इतने में परचेस किया?
मेरे ऊपर तो ये था भाई साहब कि मेरी, मैं जब पहली जॉब की थी तो 1700 रुपए सैलरी पे जॉब की थी, फिर मेरे बॉस बाहर चला गया, उसने कहा ये काम आप संभालो। जब मैं एक डेढ़ साल के बाद वो आए, इसके बाद इन्होंने ये किया कि 10% मेरी सैलरी प्लस 10% कर दिया, सैलरी बढ़ा, फिर 20%, एंड ऑफ द डे मैं 50% उस कंपनी में पार्टनर था, उस डिपार्टमेंट का, अल्हम्दुलिल्लाह।
ये परचेजिंग के तौर पर आप समझिए, आप ये 1700 रुपए की जॉब करके आप कहते हैं ना ये जहाँ खड़ेंगे वहीं खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये मतलब कि सेठ अपनी किडनी से ही कराने गया था, उसका दिल विल भी आगे पीछे हो गया कि यार 8 लाख रुपये, मतलब उसने, यानी मैं जिनके साथ काम करता था, और मैं आगे आपको पता है कि मैंने एक और बिजनेस किए, तो पहले तो हम थोड़ा बहुत मिलजुल कर एक मतलब जुजवी तौर पर एक पार्टनरशिप होती थी, और जब कुछ और मैंने काम किए तो मुझे कहने लगे यार तुम तो कमा कर दे रहे हो, यानी हम तो, मेरे ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, आपका भी एक्सपीरियंस है, अगर आप इस तरह कुछ करते हैं ना तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में आपके उसमें बरकतें अता फरमा देता है। आप समझते हैं कि मैं चोरी करूंगा और खरीदारी में मैं डंडी मारूंगा, और मतलब कैसे हो सकता है कि यार जिस फैक्ट्री से आपके घर का चूल्हा जल रहा है आप उसी फैक्ट्री की आग बुझाने पर तुले हुए हैं यार, आप उसी सेट को नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं। अच्छा, फिर ऑफिस भी इनका हमें मिल गया, ये आपको सही बता रहा हूँ, इनका ऑफिस मिल गया था, इनके ऑफिस में बैठकर हम दावत इस्लामी के काम क्या करते थे, तो ये सब चीजें इनको फ्री एंड था, ये हमें हमारे सामने था फ्री एंड था इनका आना जाना सब, क्यों कि इन्होंने अपनी परचेजिंग में ईमानदारी को दाखिल कर दिया था।
ईमानदारी पे सर मैं एक बात अभी मैं बताता हूँ, ईमानदारी पे एक वाकया बता रहा हूँ आपको। हमारे कपड़ा मार्केट में मतलब कुछ परचेसिंग की जाती है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, थान पे पट्टियाँ लगाना, इस तरह करके उसके अंदर जो ट्यूब लगती है, तो एक किसी को नौकरी लगा दिया था 11,000 रुपये तनख्वाह में, उसको पहले 10,000 थी, उनको 11,000 रुपये तनख्वाह में लगा दिया। मेरे को उसके सेठ ने बोला कि आप तनख्वाह को छोड़ो, हम देख लेंगे। तो उन्होंने इस परचेसिंग का इसको दे दिया। एक महीने की परचेसिंग में जितनी इनकी थैलियाँ आती थी, जो आती थी, उनको 2700 रुपये का फ़र्क आ गया एक महीने के अंदर। फिर हालांकि बहुत छोटा काम था। तो बोला अल्ताफ़, मेरी मैं इसकी सैलरी क्या करूँ, मेरे को तो 2700 रुपये बचा, पता नहीं कितने पैसे वो लेके गया होगा जो पुराना था, मैं इसकी सैलरी आज से 15,000 रुपये कर दूंगा, मेरे को बचा के तो देता है। तो इस तरह ये एतमाद बहाल होने से फिर इंसान को इसका बेनिफिट भी मिलता है।
ये पूरा खरीदारी के तौर पर एक टॉपिक है। अगरचे हम थोड़ा सा इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पर लेकर गए, तो डेफिनेटली खरीदारी और एक्सपीरियंस सारी चीज़ों में अगर ईमानदार। अच्छा, आपको लगता है कि जो अगर हम 40-50 साल के इस डिफरेंस को हम डिस्कस करें, कि पूरा 40-50 साल का जो ड्यूरेशन है, कि आज जो परचेजिंग या ख़रीदारी के नाम पर एक बेमानी का और गैर जिम्मेदारी का जो एक पहलू है, वो 30-40-50 साल पहले नहीं था।
खौफ़े खुदा ख़त्म हो गया, किसी को भी नहीं पता। 7.5 रुपये की पानी की बोतल मिलती है होलसेल में, कार्टन में, कहीं भी आप लेंगे आम पानी जो मिनरल वाटर है, वो आपको स्टोर पे 30 रुपये का मिलेगा। हम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए देखेंगे यार पानी हम ले रहे हैं तो कौन सा पियेंगे, मिसाल के तौर वो हम देखेंगे साफ़ पानी है, अच्छी कंपनी का, इस तरह लेते हैं। लेकिन यहाँ खौफ खुदा ख़त्म हो गया, वो 7.5 रुपये वाला पानी भी आम नहीं भर, वो भी नहीं भर के देते, उसमें आम पानी भर के दे देते हैं, जो कि आम 7 रुपये की बोतल मिलती है वो 30 रुपये का। तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी बहुत है, क्योंकि एक्सपेंसिव भी बहुत हैं।
अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो सूरत हाल तब्दील हुई है, अब जब खरीदारी पर ही बात कर रहे हैं ना, कि यार पहले खरीदारी में मैं नहीं कहता लोग बेमानी नहीं करते थे, लेकिन आज खरीदारी के नाम पर बेमानी करने वालों की एक, अभी तो हम इस वक्त जॉब और खरीदारी पर ही चल रहे हैं, फिर तो हम घर की खरीदारी पर अलग आएंगे, और ख़रीदारी में क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, एक ख़रीदार को क्या क्या सोच रखनी चाहिए, उस पर भी आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि एक ये जो आजकल जो चीज़ें जो ग्लैमराइज हुई हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पर जो लोग देख रहे होते हैं कि यार ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, कपड़े ऐसे पहन लिए, पहले तो कुछ देखने के लिए बंदे को वहाँ जाना पड़ता था, अब तो आता है यार
ऑनलाइन सब
गाड़ियाँ हो गई, ये हो गई, हर तक आम आदमी के पास ऐसी हो गई, यार मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, और ख्वाहिशात पर कंट्रोल ना रहा, और इस चीज़ ने सामने वाले को नफ्स व शैतान का खिलौना बनने पर ज़्यादा उकसाया है, क्या लगता है?
ये सब इस ऑनलाइन के हवाले से तो मेरा अपना जाती तजर्बा थोड़ा सा कम है, यानी कि
नहीं ऑनलाइन की बात नहीं, ये जो चीज़ें जो नज़र आती हैं उसने सामने वाले को कर दिया, ये मैं छोटा मोटा करके कब तक ये कमाऊंगा, ये मैं कैसे करूंगा। अब वो मतलब वो रातों रात जल्दी अमीर बनने
नहीं,
ये फास्ट
कंट्रोल
नहीं हो रहा, और फिर वो सैलरी से पूरा नहीं हो रहा, और वो चाह रहा है कि मैं बेईमानी
तरक्की करता हूं,
जो काम ईमानदारी तनखा पूरा नहीं करी वो समझ रहे बेईमानी से पूरा हो जाएगा।
भाई साहब मतलब अगर खरीदारी के हवाले से मिसाल के हर किसी को अगर मतलब ये देखे कि मैं कौन सी चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, इसकी आखिरी जो मैन्युफैक्चरिंग है क्या, इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, और फिर लास्ट कंज्यूमर किस दाम में ले रहा है, तो मेरी तो मेरी कोशिश होगी कि मैं खरीदार हूँ तो मैं कंज्यूमर से नहीं लूँगा, मैं उससे लूँगा जो मैन्युफैक्चरर।
हमारे मदनी चैनल की जब वो खरीदारी चल रही थी, आज से तकरीबन 16-17 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो ये जो अभी अल्ताफ भाई ने कहा, तो हमें चूँकि हमें तो इतना वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का, वो भी चैनल के नाम पर चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हमने एक टीम ऐसी इस्टेब्लिश की थी जो कि इस मामले को देख कर चलती थी, जिनको ख़रीदारी का तजर्बा था। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, उनको उस इक्विपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं था प्रॉपरली, मैं आपको सही बता रहा हूँ, असल जो इनको एक्सपीरियंस था ना, चीज़ खरीदनी किधर से और कैसी है, ये था। अब वो जाते थे पूरी डीप में, और वो इससे ले माल ली, इससे तो वो कहाँ बनती है वहाँ ली, कहाँ बनती है वहाँ ली, करते 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 करते, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ अब्दुल कादिर पर शायद आपको याद हो, चंद सालों में जितने हमने ख़रीदारी की थी, आई थिंक सिर्फ उस मजलिस ने दावत इस्लामी को ख़रीदारी के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपयों की बचत करवाई थी, करोड़ों करोड़ रुपए की बचत करवाई थी। ये रिकॉर्ड ऑन पेपर पे बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम ये इस तरह ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उतना टाइम टेकिंग है कि आप डेफिनेटली आप थोड़ा सा इस पर वर्किंग करते हैं, थोड़ी तो ड्रिल करते हैं, या आप घर के लिए भी खरीदारी करते हैं। यानी मुझे भी ऐसा हुआ कि जब मुझे घर बनाना था तो मैं कहा कि यार मुझे तो कोई भी चीज़ लाकर दे देता, भाई हम आपको लाकर दे देंगे, लेकिन मुझे ये करना पड़ा कि मैं जाकर सेल ढूंढता था एज ए खरीदार परचेजर। मैं देखता था सेल कहाँ लगी है, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि हम यही उठा लेंगे ये उठा लेंगे, तो फिर वो चीज़ सेल में ढूंढा, फिर पता चला 2 महीने के बाद वहाँ सेल लगेगी। अरे मैं कहूँ सेल भी लगेगी कि कोई ड्रामा होगा, बोला नहीं यार वो प्रॉपर सेल लगाता है ना, तो चलो 2 महीने रुक जाते हैं भैया। अगर 2 महीने रुकने के बाद मैं अगर 5 लाख रुपए बचा लेता हूँ तो मैं 2 महीने में 5 लाख कमाऊंगा कब? अब ये समझ रहे हैं आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ? 2 लाख अगर 2 महीने में 5 लाख की बचत हो रही है तो आप बताइए कि 2-5 लाख कमाने में बंदा तो 1 साल लगा देता है, तब तो 5 लाख रुपए नहीं कमा सकता, तो आप थोड़ा रुक जाइए 2 महीने के लिए। तो रुक गए, जब फिर या तो पता चले भाई ये तो थोड़ा चंद महीने पुराना स्टॉक है अभी खत्म हो रहा है, हम नया माल ला रहा है, तो आप लोगों ने कौन सा मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना है कि ये टाइलें जो जो लगी ना मेरे घर में दुनिया में यही एक टाइल है, इसके अलावा कोई टाइल है ही कोई नहीं, मुझे अवार्ड देना चाहिए। अब भैया टाइल सही अच्छी है ले ले, ये फला अच्छा है ले ले फला अच्छा, खुद जाना पड़ता है। और मैंने पर्सनल जाकर खरीदारी करने में और सेल ढूंढ कर खरीदारी करने में, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, सेल ढूंढ कर खरीदारी करने में लाखों लाख, जी हाँ लाखों लाख रुपए का बेनिफिट पाया है। सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा आपको मतलब कि अपनी नफ्स को मानना पड़ता है यार थोड़ा, अरे तो मुंह से ये भी तो नहीं निकलता ना थोड़ा कम कर दो, या बेइज्जती हो भाई क्या क्या बेइज्जती हो जाएगी। चुटकुला सुना रहा हूँ, हम दोस्त कहीं खाने के लिए गए थे रेस्टोरेंट में, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, शूरा से पहले की बात कर रहा हूँ, हमने सेल की थी, पार्टनर थे हम लोग, तो सेल की थी, कहा चलो खाना खाते हैं यार, आज थोड़ा कारोबार अच्छा हो गया था, तो खाना खाने के लिए तो हमारे साथ जो एक था मेरा एक पार्टनर ही था, तो अब हमने जो खाने का ऑर्डर दिया ना तो वो मेन्यू देख रहा था, आप यकीन माने ना माने वो मेन्यू में जो रेस्टोरेंट वाले तो बार्गेनिंग करा रहा था ना कि यार ये मेन्यू में बार्गेनिंग करा रहा है, मतलब विशाखा तो आपको चीज लेने जाते हैं कि भाई ये सालन इतने का है, तो यार 110 रुपये का सालन है यार, इसको 90 रुपये में दे दो ना यार, और वो हमारा मुंह देख रहा है, मैंने यार क्या कर रहा है, बोले क्या यार मुफ्त का पैसा थोड़ी है, बार्गेनिंग कराने में क्या जाता है, वैसे टोटल पर डिस्काउंट तो ले लेते हैं, थोड़ा इस पर भी बातचीत कर लेंगे। मगर मैं अच्छा जो जो ये बार्गेनिंग करा रहा था ये कोई मतलब कि वो फुटपाथ वाला आदमी नहीं था, जी हाँ मतलब उस टाइम पर करोड़पति आदमी था जो हम जो पार्टनर हुआ करते थे। ये मैं आपको सब हमारे क्योंकि हमारे तो प्रोग्राम का नाम ही तजर्बात की दुनिया है ना, हम तो आपको अपने तजर्बात शेयर कर रहे हैं, लेकिन बेनी को आप रेस्टोरेंट में जाकर बार्गेनिंग कराना शुरू कर देना लोग हमारा प्रोग्राम देखना बंद कर देंगे। लेकिन मैं आपको अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि लोग इस तरह के भी अप्रोच कर रहे होते हैं, तो यार क्या है इसमें वो अच्छा उसको नहीं आती थी इसमें कोई वो झिझक नहीं थी, वो कर लेता, तो ये मजाक भी नहीं है या हाँ ये मजाक नहीं कर रहा वो कोई चलो कि वो होटल वाले का तो मजाक कर रहा था, ना ना ही वाज सीरियस, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा आप चलते अब्दुल कादिर भाई के पास, अब्दुल कादिर भाई से मैंने 2 सवाल किए, क्योंकि मैंने 2 सवाल किए दोनों के। अब हम घर की तरफ चलते हैं, पर्सनल परचेजिंग, घर की परचेजिंग, आटा दाल चावल चीनी या घर के लिए कोई चीजें लेना। अब जॉब करते थे, क्योंकि अब दो दो लोग आपको सुन रहे हैं, एक वो जो जॉब करता है सैलरी पर्सन है, एक वो जो अपना बिजनेस करता है, ठीक है आप, और आप दोनों अदवार से गुजरे हुए हैं, ठीक है तो ये शुरू से सेट है, ठीक है ये शुरू से सेट है, तो इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो आप इन दोनों खरीदारी को किस तरह देखते हैं कि जब सैलरी कम थी यानी आमदनी कम थी, खरीदारी तो उस वक्त भी करने जाते थे, अब खरीदारी उसके वो अब ठीक हो गई, एक मिसाल के तो अपना कारोबार हो गया, अब उसके मुकाबले में मेरी आमदनी ज़्यादा बेहतर हो गई है, तो क्या आपकी खरीदारी पर असर पड़ा है और आपकी खरीदारी करने की सोच पर असर पड़ा है?
बिल्कुल पड़ा है, पड़ा है ना? उस वक्त जैसे होलसेल मार्केट के अंदर जाते थे कम से कम कीमत में, जहाँ से जैसे चावल लेने गए तो चावल भी कण की इससे छोटी और मिल जाए और सस्ता मिल जाए चावल, मुख्तलिफ जगह से ले गए चावल ले लिया, दालें ले ली, राशन की जो चीजें जोड़िया
बना, शाम को फ्रूट खरीदा
और शाम के टाइम पे फ्रूट खरीदा जो एंड टाइम पे, तो उसमें जोड़िया बाजार अंचोलेन हो गया वहाँ पे सस्ता फ्रूट मिल जाता था।
और
अभी ये होता है कि अभी स्टोर में जाके सारी चीजें खरीद लेते हैं,
ये फर्क है, घर जाते जाते गोश्त लेते हुए हम जाते थे,
एमपीएस मार्केट
ऑफिस से घर जाते थे हम गोश्त लेने,
लेकिन उसका गोश्त तो गाय सब शाम के टाइम सस्ता नहीं मिलता, गोश्त का रेट तो एक ही होता
नहीं, था। नहीं हमें हमें पता था कहाँ मिलता था। हाँ मैं तो वहाँ भी पहुँचता था ना जहाँ मतलब कि ताज़ा और सस्ता।
घर के राशन के हवाले से तो जुड़िया बाजार रंचोलेन यहाँ पे,
और अब तो आप सुपर स्टोर में,
अब तो सुपर स्टोर है सब,
एक चीज लेने गए
एक ही जगह से सारी चीजें मिल गई फटाफट जल्दी लेंगे।
मगर एक जगह तो सारी चीजें मिल गई मगर जरूरत से ज्यादा मिल गई,
जरूरत से ज्यादा बिल भी बहुत ज्यादा बन जाते,
और उसके बाद मोहम्मद में बंदा डब्बे निकाल भी नहीं सकता,
उधर तो डिस्काउंट भी नहीं कर सकते।
आपने देखा है अजी अजी अल्ताफ भाई, कार्ड से पेमेंट करने में और कैश से पेमेंट करने में बहुत फर्क है। जब आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं ना, आपको पेमेंट इतनी इफेक्ट नहीं कर रही होती,
सही बात है। जेब से
और जब आप कैश दे रहे होते हैं ना
तो जेब से निकलता है,
तो वो यार मतलब जैसे भारी पड़ जाता है यार, ये इतने सारे निकल गए। तो ये भी एक ये फर्क अल्लाह करेगा समझने में कामयाब हो जाए जो हमने कहा है। तो अब पता चला कि जब आप खरीदारी के लिए गए तो हमारे यहाँ यही होता है कि हम स्टोर में चले जाते हैं, जब स्टोर में जाते हैं वो भी फैमिली के साथ अल्लाह अकबर, तो जब वापस आते तो ट्रॉली में बच्चे ने 10 चीजें अलग डाली होती हैं, बच्चे की माँ ने अलग 2 चीजें डाली होती हैं, आपने भी 2-4 चीजें मतलब के सखावत आपका जोर पर होती है, और जो फिर घर पे जाकर जो मगजमारी होती है। तो इसमें यही होता है कि अगर इसमें ऑनलाइन परचेजिंग का फायदा है।
ऐसे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अगर फैमिली के साथ जाते ना तो स्टोर के ऊपर डबल बिल बनता है, डबल बिल
आपकी फैमिली देख रही
है, बिल्कुल डबल बिल बनता है। बगैर फैमिली के जाते हैं तो आधा बिल में स्टोर से भी फारिग हो जाता है बंदा,
अकेले जाए तो तो उसमें सब फैमिली ने कहा ना कि अब ये मतलब मिसा के तो भाई ये
वो तो एक लिस्ट होती है ना ऐसे, वो लिस्ट के हिसाब से लेके आ गए, लेकिन जब बच्चे साथ होते तो वो वहाँ से ये उठा रहा है, अलग बच्चा दूसरा बच्चा वहाँ से ये उठा रहा है तीसरा बच्चा,
वो मुलाजिम है तो मुलाजिम को भेजो ना तो आपकी टेंशन कम है। अच्छा बाद आइटम वो जो रिटेल के अंदर भी जाए कहीं भी जाए उसके रेट सेम है, चाय की पत्ती जैसे जिस मशहूर नाम से बिकती है, शरबत जिस मशहूर नाम से बिकता है, तो वो उसके रेट सेम होते हैं, उसके में कोई आदमी मतलब डंडी वंडी इतनी मार नहीं सकता, कम चांसेस हैं, क्वालिटी की मैं बात नहीं कर रहा। इसी तरह अगर आप किसी को कॉल करते हैं ऑनलाइन परचेसिंग कर लेते हैं तो ऑनलाइन परचेसिंग में भी आपको जो चाहिए वही घर आएगा और उतने रुपए में घर आएगा, मगर जो गए आप फैमिली के साथ किसी सुपर स्टोर के अंदर, जैसे कि हम वो जाते हैं बकाला, जो अरब दुनिया में जो छोटी छोटी ग्रोसरी की जो दुकानें होती हैं
बकाला बोलते
हैं, अगर वहाँ जाएँ तो मिसाल के तौर पर जो अरब दुनिया है इस तरह जहाँ का रियाल धिरम में जो खर्च होता है, तो बंदा 20-30 दिरहम या 20-30 रियाल में कुछ जरूरत की चीजें खरीद लेगा, मगर यही बकाला को छोड़कर छोटी ग्रोसरी की दुकान को छोड़कर जाके बिल्डिंग के नीचे बनी हुई थी, अगर किसी बड़े मॉल में या किसी सुपर स्टोर में चला जाए तो वही 50 रियाल की चीज को वो शायद 150, 300 या 500 रियाल में लेकर वापस आएगा, और फिर घर आकर उसको समझ पड़ेगा मेरा हो क्या गया। तो खरीदार करने वाले के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि एक तो ये कि हमारे अब्दुल कादिर भाई ने जो कहा कि अव्वलिन तो आप होलसेल की तरफ जाएं। और अच्छा ऐसे स्टोर भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसे हमारे यहाँ भी स्टोर हैं, कराची में भी हैं, दुनिया में ऐसे स्टोर मिलते हैं जहाँ पर आपको होलसेल रेट में ही चीज़ मिलती है, भले आप वो रिटेल में उठाते हैं मगर समटाइम आपको बाहर रिटेल के मुकाबले भी वो स्टोर जो है ना वो सस्ता दे रहा होता है, ऐसे भी होते हैं क्योंकि वो खुद बल्क में उठाते हैं और उनको रेट कम पड़ता है, जब उनको रेट कम पड़ता है तो वो बाज़ औक़ात उसको सेल भी कम रेट पर कर रहे होते हैं। अब ये सारी स्टडी करे कौन। अच्छा फिर आप जब खरीदारी के लिए गए तो आप खरीदारी के लिए अल्ताफ भाई जब जाते हैं तो ये क्या चीज़ है कि जो 4 चीज़ की जगह बंदा 8 चीज़ खरीद लेता है।
मतलब भाई साहब आजकल की जो मतलब मसाइल जो है ना वो सबसे ज़्यादा तो मेरे को लगता है अमाउंट और रकम के हिसाब से हैं। अब एक दफ़ा मैं एक जगह पे जाऊंगा 4 की जगह पे 8 चीज़ें ऐसी लूँगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ूंगा तो मेरी जॉब की कटिंग होगी या जो भी मामला आते हैं इस तरह भी। मिसाल के तौर पर आप एक फैमिली को लेके गए हैं, आप पूरे महीने का बिल बनाएंगे, पूरे महीने की चीज़ें लाएंगे, वो एक साथ आपके 20,000-30,000 रुपये खर्च होंगे। अगर आप डेली लेके नहीं जा रहे तो 500,000 रुपये 400,000 रुपये इस तरह खरीदेंगे तो वो भी आपको इफेक्ट आता है वन शॉट लेके।
आप वन शॉट खरीद लाभ ये कहना चाहते हैं,
रनिंग फाइनेंस में भी आपका मतलब वो आती है, शॉर्टेज आती है, क्योंकि आप वन टाइम खरीदने जाते हैं, जिस तरह आम आदमी जाता है स्टोर में वो खरीदने जाएगा
पहली तारीख को तकरीबन 6-7 तारीख के दरमियान
हर स्टोर पे रश होता है,
स्टोर पे रश होता है।
आपके पास ऑनलाइन जब से शुरू हुई है ना, ऑनलाइन सबसे शुरू हुई है तब आपसे कोई भी आइटम के बारे में किसी का कोई तकाजा नहीं है कि कहीं ये कबाब 300 रुपये का मिलता है तो कहीं कबाब 500 रुपये का मिलता है, कहीं कबाब 400 रुपये का, ऑनलाइन का ऑर्डर देना है आजकल, जब से ये ऑनलाइन का हुआ है इस वजह से वो हो गया,
मामला बहुत खराब हो। माशाल्लाह इन्होंने जो सबसे पहले आपने लिया था एतमाद, تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا میں نے پڑھا کہ میں سادت میں کہ خریدار کوئی بھی ہو اگر بیچنے والا اس کا اعتماد بحال رکھے گا تو اس کا مال بھی بکے گا اور جس میں آپ نے کہا وہ اعتماد جس کو ہم نے پرچیز کے لیے کہا اس پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں
اور کئی بار
جمعہ میں کئی بیان بھی کرنا ہوتا ہے مدنی مشورے میں یہ مثال دیتا ہوں. میں نے بھی جاب کی ہے عبد القادر بھائی تھوڑی بہت کی ہوگی. میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم اپنے امپلائی کو 30,000 روپے سیلری دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی کھانا الگ سے آئے گا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جمعہ کے دن وہ مشہور جو ریسٹورنٹ کا کھانا آتا ہے بریانی آتی ہے یہ آتی ہے اور ہم اپنے امپلائی کو کہتے ہیں 35,000 روپے سیلری ہے کھانا اس میں آ گیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتا. وہ گھر سے انڈا پراٹھا اور ماں نے جو اس کو یا وائف نے کچھ دیا ہے نا تو وہ لے کر آتا ہے اور پھر 2-3 دوست مل جاتے ہیں اور پھر ایسے باکڑے پہ جاتے ہیں کہ جہاں پر 400-500 میں دونوں تینوں کھا لے چائے کر لے ترکیب کر. میں نے بھی جاب کی ہے لیکن جہاں سیٹ کی بات آتی ہے تو وہی بل جمعہ کے دن اور وہی دن عام دن میں 1,500 روپے کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یہاں جو بھی کرے گا نا تو ہم نے یہ ذہن بنانا چاہیے کہ یار یہ سیٹ نہیں ہے یار یہ میرا ہے. جیسے پرچیزر کوئی کرے بروکر پرچیز کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ میں مال اس کو پہنا تو دوں گا میری بروکری مثال کے طور 10 روپے کٹتا ہے 50 روپے کٹتا ہے یہ کل اس کو مال کہاں اس کو کھڑا ہے.
اب تم گھر کی خریداری پر آ گئے نا.
جی جی
گھر کی خریداری پر آ گئے کہ گھر کی خریداری کرنے کیونکہ اب یہ جو ہمیں دیکھنے والوں کی میجورٹی تو وہی ہے نا چاہے وہ میل ہیں کہ فیمیل ہیں وہ گھر کے لیے خریداری کر رہے ہوتے ہیں. ٹماٹر خریدنا ہے آٹا خریدنا ہے یہ خریدنا ہے دودھ ہے دہی ہے یہ سب
اس میں بھی ہے سب جو ابھی.
اچھا پھر وہ اپنے کچن کا سامان الگ ہے باتھ روم کا سامان الگ ہے.
اس میں جو آپ نے ابھی جو مارٹ وغیرہ جو مالز وغیرہ ہیں اس میں اتفاق کی بات ہے میرا تو آج تک جانا نہیں ہوا اور میں گھر نہیں چلاتا ہوں تو گھر والے کبھی کبھی چلے جاتے ہوں گے جا کے خریداری کر لیتے لیکن بہت اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ میں خود دیکھتا بھی ہوں اس میں. لیکن چونکہ میرا جہاں سے تعلق ہے میں نکلتا ہوں تو مجھے پتہ ہے واقعی میں ایک مشہور برانڈس کی مٹھائی کا بتاتا ہوں کہ کراچی میں اس کی 3 یا 4 برانچیں ہیں ایک ہی شہر میں 200 روپے کلو کا سیم کوالٹی کا فرق ہے وہ میں جانتا ہوں. 200 روپے اس کی ایک کے جی پر فرق ہے تو اس طرح اگر کسی نے 100 کلو لیا تو 20,000 روپے.
اچھا وہی سیم
چیز ہے
تو اس کے وہاں کرایہ الگ ہوگا وہاں لیبر کا خرچہ الگ ہوگا.
یہ بھی ہوتا ہے
جو اس کی دیگر جو اس نے جو مینٹیننس اصل میں ہوتا ہے کہ یہ بھی بتا دو تاکہ لوگوں کو یہ اس میں صرف ایسا ہی نہیں ہوتا اگرچہ کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہوگا لیکن وہاں کے انوائرمنٹ میں فرق نہیں دکان کے انوائرمنٹ میں فرق ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دو ہو سکتا ہے یا 200 روپے کم ہے وہاں 4 مکھیاں نظر آئیں گی یا 200 روپے مہنگا وہاں کوئی مکھی بھی نظر نہیں آئے گی.
ایسا برانڈ کا
یہ بھی میں آپ کو نہیں سیم برانڈ میں یہ مٹھائی کی انہوں نے مثال دی نا اس لیے میں نے مکھی کو ساتھ مکھی نے مٹھائی دونوں ساتھ ساتھ میں وہ کہاں جائیں گے. تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا فرق پڑتا ہے وہاں سے وہاں کا لانے کا فرق پڑتا ہے جس ایریا میں اس دکان کا فرق پڑتا ہے. اچھا جو عام دکان پر جو اس کی وہ جہاں 200 روپے کم میں بھی مٹھائی تھی وہاں آپ کو عام پولیتھین پلاسٹک کی تھیلی میں دے دیں گے جہاں 200 روپے کی مہنگی مٹھائی تھی وہاں اپنی برانڈ کی تھیلی میں دے دیں گے. تو کیونکہ لوگ بھی وہاں تبدیل ہو جاتے ہیں ان کی ڈیمانڈ تبدیل ہو جاتی ہے تو کوالٹی سیم ہوتی ہے مگر سروسز بدل جاتی ہیں وہاں کا کرایہ بدل جاتا ہے تو یہ بھی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اچھا پھر جہاں پر انہوں نے جگہ لی ہوتی ہے وہاں ان کو پارکنگ دینی پڑتی ہے. عام دکان میں رکشے سے اترا آدمی لیا چلا گیا وہاں رکشہ بکشا ہے کوئی نہیں اور پھر ایریا کا ہوتا ہے کہ یار سستا بیچیں گے. اچھا یہ بتا دوں بعد ایریا ہوا ہے ان کو پتا کہ سستا بیچیں گے کوئی نہیں کوئی خریدے گا ہی نہیں
خریدے گا نہیں
مہنگا بیچیں گے تو لوگ خریدیں گے. یعنی خریدار کی بھی عجیب دنیا ہے
یہ بات بھی
یعنی سستا خریدنا ہی نہیں ہے خریدنا مہنگا یعنی سستا بولے تو یار اتنا سستا یار صحیح لگتا مال صحیح نہیں ہے وہ مہنگا بولے ہاں رسکا کو اس کی چیز ہوتی ہے نا. تو یہ ہمارے دماغ سے ہی بعض وقت کھیلا جا رہا ہوتا ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اس میں میں خریداری کے طور پر جو میں اپنے اسلام بھائی سے بات کر رہا ہوں پہلے بھی میں مدنی چینل پہ یہ کہہ چکا ہوں تمام گھر کی چیزیں خریدنے والوں کو کہہ رہا ہوں آپ کی سیلری یا آپ کی گھر کی آمدنی مجموعی طور پر بعض اوقات آپ کے جو بھی فیملی ممبر ہیں میں ایک مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں لائک جو ہمارا مڈل کلاس طبقہ بہت ہیوج ہے بہت بڑا طبقہ اور یہی زیادہ تر پرابلم میں ہے مڈل کلاس جس کو کہتے ہیں ایک تو بالکل ایک کہتے ہیں لوور کے وہ اس کو اتنا زیادہ پرابلم ہے مگر اس کو پتہ ہے کہ میں اسی طرح سروائیو کرتا ہوں لیکن مڈل کلاس تھوڑا سا پر مڈل کلاس اس کو وہ اس کا رکھ رکھاؤ کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا کرے. اب میں اس کی بات کر رہا ہوں جو 40-50 ہزار روپے جس کی گھر کے اندر آمدنی ہے یا या 60-70 हज़ार ले लेंगे, भाई बेटा भी 20-25 हज़ार रुपये कहीं से ले आता है, अब वो क्या करे? या 1-1.25 लाख वाला भी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ये जो मुझे पता है जो थोड़ा बहुत मैंने 1-1.25 लाख 1.5 लाख वाला इसको मिडिल क्लास ही कहते हैं आप, ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब इसमें यूटिलिटीज़ वगैरह सब शामिल, अभी मैं यूटिलिटीज़ को नहीं ले रहा होता, जो आपकी बिजली गैस वगैरह चीज़ें होती हैं, अब मैं ख़रीदारी की तरफ आ रहा हूँ। काइंडली एक बार किचन में बैठकर लिस्ट बना लें कि वो कौन सी चीज़ें जिसके बगैर किचन चल जाएगा, एक बार बाथरूम के अंदर देख लेंगे वो कौन सी बाथरूम की चीज़ें जिसके बगैर हमारा जो नहाने धोने का मामला वो चल जाएगा। इसी तरह कपड़े धोने की चीज़ें होती हैं, सिर्फ साफ सफाई की चीज़ें होती हैं, जो जो घर की बातों का ज़रूरतें जो चीज़ें होती हैं उसमें अगर आप गौर करेंगे ना तो कई चीज़ें आपकी गैर ज़रूरी निकल आएंगी, यानी उसका 1-2 महीने 3 महीने में कभी इस्तेमाल हुआ तो हुआ, वरना वो भी बातों का इस्तेमाल नहीं होता, या फिर वो मुजीर सेहत होती हैं, कोई इतनी वो इतनी वो उमदा चीज़ें नहीं होती हैं, बस आपने लाकर घर में रख दिया या काम आएंगी, भले वजन बढ़ाएंगी कोई मसला नहीं है। इसी तरह जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, एक तो उसे उस पर गौर कर लें कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, उसकी मिकदार आप इतनी। अभी मैं लास्ट टाइम सफ़र में था तो हम जाते तो वहाँ ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया गया था, तो अच्छा वो ब्रेकफास्ट में ये था कि आप वहाँ जाएँ वो आपको ऑमलेट तैयार करके देता था। तो अब मैं तो अब मैं अपनी डाइट लेके चल रहा था, डाइट प्लान के साथ मैं चलूँ, तो अब मैं गया तो उसने जो अंडा डालने से पहले जो उसकी जो फ्राई पैन होता है, फ्राई पैन के अंदर उसने इतना सारा तेल निकाल कर डालना चाहा, व्हाट आर यू डूइंग? तो वो जो देख रहा था ना, मेरे को उसको कम करो, मैंने उसको समझाया तो कम करो, भाजी इसे थोड़ा तो यूँ डाल दिया ना, मेरे को और कम करो, उसको और डाल दिया, और कम करो, और मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा कम करा, इतना सा तेल रह गया। अब वो मेरा मुँह देख रहा है, मतलब उसका ये था कि इस पर बनेगा कैसे, मैं कहा डाल के तो दे, उसने डाला, बन गया, और जैसा बना वैसा बन गया, मैं कहा देख कैसा बन गया, अब वो मेरा मुंह देख रहा था। अब ये एक मतलब इतना बड़ा चम्मच को मैंने इतना सा छोटा सा मैंने कर दिया, इसको बोलो आधा आधा भी इतना सा कर दिया, बन गया अंडा ऑमलेट था, बन गया। अब आप सोचिए कि जो तेल आप 1 महीने में कंज्यूम करते हैं ना, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, इस कुकिंग ऑयल को या जो भी आप यूज़ करते हैं, चाहे वो आप नमक यूज़ करते हैं, जो भी क्योंकि मसाले यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, जो चीज़ आप 1 महीने में ख़त्म करते हैं ना, आप आज इस फार्मूले पर अमल करें वो चीज़ें आपको 2 महीने चलेंगी, ना चले तो मुझे कहिएगा। और आप सोचिए कि इस पर आपका बजट कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। यूटिलिटीज तो अलग हैं वो, क्योंकि हमारा इस पर टॉपिक खरीदारी है, ख़रीदारी के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को कम खरीदेंगे। अच्छा साबुन आपने लिया, अब साबुन लाकर आपने अच्छा साबुन की जो वो क्या कहते हैं सॉप रेक होता है, वो जो होता है जिसमें आप साबुन रखते हैं, ट्रे होती है साबुन की, वो सुराख वाली नहीं होती। जब आप साबुन से हाथ धोते हैं तो पानी के साथ वो साबुन जाता है उस ट्रे के अंदर, और थोड़ी देर वो पानी छोड़ देता है साबुन, और वो फिर आप थोड़ी देर देखें तो वो साबुन के अंदर जो ना इतना सारा पानी, साबुन ना पानी में तैर रहा होता है, 2-4 लोग हाथ धोते हैं तो पानी तो साबुन को ले लेगा। जो साबुन आपको 1 महीना चलता है, इस बेहतियाती की वजह से 15 दिन में ख़त्म हो गया। आपको लगेगा यार बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहा है, तो भाई छोटी छोटी चीज़ों ने तो आपका ये कहा एक एक बाल गिरता है तो सबके को एक साथ को पूरा गंजा थोड़ी हो जाता है, थोड़े 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 बाल गिरने शुरू हो जाते, फिर एहसास होता है मैं तो गंजा हो गया, और भाई जब बाल गिर रहे थे तब कहाँ थे, तो थोड़े 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 बाल गिर रहे होते हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना, यही मतलब कि हमारे बजट पर भारी पड़ रही होती हैं, जिसका नॉर्मली घरों में इसको फील नहीं किया जाता। कपड़ा धोने के अंदर इतना ज़्यादा डिटर्जेंट यूज़ कर दिया आपने, अच्छा जो डिटर्जेंट जो पाउडर आपने कपड़ा धोने के लिए यूज़ किया, अगर आप किसी अक्लमंद दाना के साथ बात करें ना, तो वो आपका वही डिटर्जेंट पाउडर तकरीबन 2 से 2.5 महीने चलाएगा, जो आपका 20 दिन नहीं चला। जो कपड़े धोने का साबुन आपने यूज़ किया वो तकरीबन 2 से 2.5 महीने चलेगा, जो कि आपका 15 से 20 दिन नहीं चला। जो टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं ना, वो तकरीबन 2 महीने चलेगा, क्योंकि आपको बताया इतना सारा निकालो, किसने कहा इतना सारा निकालो, इतना सारा नहीं निकालो, कोई लॉजिक को अक्ल का भी तो इस्तेमाल होता है, नहीं होता नहीं निकाले। तो आपका वही टूथपेस्ट जो आपको आपको 2 महीने चलता, वो टूथपेस्ट आपने 15 से 20 दिन में ख़त्म कर दिया। ये अगर आप इस तरह जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इस तरह की चीज़ें देखते चले जाएँ और अपने बर्तनों को साफ करना सीखें और ज़ाया होने से बचाना सीखें, आपका वो तमाम तरह जो मैंने चीज़ें कही हैं, जो घर की चीज़ें हैं, जो आप हर महीने ख़रीदते हैं, आप एक बार मेरी बात पर तजर्बा करके देख ले, तजर्बा तो मैं आपका ऐसा नुकसान तो कोई भी नहीं होगा, अगर हुआ तो फायदा ही होगा, वरना जहाँ थे वही खड़े रहेंगे। तो मशवरा मैं आपको वही दे रहा हूँ, आप एक बार संजीदगी के साथ ये करके देखें और 4 महीने 5 महीने का आप इस पर पीरियड रखें, करके देखें, आपके बजट पर फर्क ना पड़े तो मुझे कहिएगा। आपकी चीज़ें जो महीने भर नहीं चलती वो 2-2, 2.5-2, 3-3 महीने तक ना चलें तो आप मुझे कहिएगा। और जब चीज़ों का इस्तेमाल करें तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर इस्तेमाल करें, आपकी उस शे में बरकत ना आए तो फिर आप हमें कहिएगा। आप करके तो देखें, आप हम चीज़ें खुद ज़ाया कर रहे होते हैं और फिर हम कर रहे होते हैं यार बचत नहीं है, बचता नहीं है। पंखे बिजली इस्तेमाल करना ये तो अलग है कि उसको तो फजूल आप इस्तेमाल ही ना करें। अब ऐसा टाइम है जहाँ बिजली लाइट जलाने का टाइम ही नहीं है, फिर भी आप लाइट जला कर बैठे हुए हैं। और एक फैमिली एक पंखे के नीचे बैठ सकती है, फिर भी 3-3, 4-4 पंखे आप घर में चला कर बैठे हुए हैं। अगर आप एसी वाला घर है तो आपका इस यूज़ ख़त्म हो गया, या मतलब जो एक ज़्यादा यूनिट जैसे प्राइसेस लेते हैं उसको आप थोड़ा सा कंसिडर कर लें। तो जब आप इस तरह लेकर चलेंगे, अच्छा सस्ती चीज़ बाजों का सस्ती चीज़ ले जाता कमज़ोर हो जाती है, वो सस्ता देखता है कमज़ोरी नहीं देखता। तो वो चीज़ साल में 4 बार ख़रीदते हैं आप और वो आपके जेब पर ज़्यादा असर डालती है। अगर वही चीज़ अच्छी ले लेंगे तो वो साल में 1 बार खरीदेंगे, अगर एवरेज देखेंगे ना तो आपने 2-2.5-3 हज़ार रुपये बचा लिए होंगे या 4-5 हज़ार रुपये बचा लिए होंगे। क्योंकि महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। ये कुछ चीज़ें मेथड्स में, ये अच्छा ये भी कुछ मेथड्स और उसूल हैं, प्रिंसिपल्स मैंने बयान किया। आप इसको रखकर आप अपने घर के बजट को और अपनी जेब को लेकर चलें, आपको देखिए अब कितना फ़र्क पड़ेगा। आप कहें यार ये लॉजिक देखो, काफ़ी जो आजकल कारें आ रही हैं अल्ताफ़ भाई, जो ऑटोमेटिक कारें आ रही हैं, सिग्नल पर बंद हो जाता है इंजन ऑटोमेटिक। अभी जो कारें आ रही हैं फिलहाल, जो इस वक्त तकरीबन 2-4-5 सालों में जो मैं देख रहा हूँ, अब सिग्नल पर कार का इंजन बंद हो जाता है, एक्सेलेटर तो इंजन शुरू हो जाता है, कार स्टार्ट होती है, वह उसको बैटरी ने बैकअप दिया हुआ होता है, पेट्रोल कंज्यूम नहीं कर रही होती कार। यानी कार ये सिग्नल कितनी देर का है, 1 से 1.5 मिनट का सिग्नल है। 1 से 1.5 मिनट के सिग्नल पर कार कितना पेट्रोल पी लेगी, खड़ी खड़ी कार। मगर कंपनियों ने ये आपको बना कर दिया है कि 1.5 से 2 मिनट जो आप सिग्नल पर खड़े, कार आपका पेट्रोल कंज्यूम नहीं करेगी, कार का जो एक बेसिक जो एक इंजन टाइप का तो बंद हो जाएगा। जैसे ही सिग्नल खुला, आपने एक्सीलेटर दिया, कार स्टार्ट जैसे हुई और कार चलना शुरू हो जाएगी। कि यहाँ भी है वहाँ भी है, दुनिया भर में ये कार है, हमने देखी है ये कारें। तो आखिर ये भी 1-1.5 मिनट की पेट्रोल कंजप्शन कर रही हैं आपकी। तो अब जो ये कार है पेट्रोल कंजप्शन पर जो आपको फार्मूला दे रही है कि आप 30 सेकेंड के सिग्नल पर पेट्रोल बचा रहे हैं, तो आप अपनी डेली ग्रोसरी और डेली के यूज को आप बचत में आप नहीं लाएंगे। फिर खरीदारी अच्छी करें, जैसे अभी हमारे इस्लाम भाई ने कहा कि आप होलसेल से खरीदारी करें।
ऐसा दो चीजें हैं, इसके अलावा सब चीजों में हम कमी ला सकते हैं, आटा और चावल तो चाहिए, उसके अंदर हम कमी नहीं ला सकते।
जबकि चावल बंदा बंद करे तो ना चाहिए, एक मिसाल
मतलब आटा और चावल दोनों में से कोई एक चीज तो चाहिए ना, जो क्वांटिटी में चाहिए वो चाहिए। इसके अलावा
जनरली तौर पर
दोनों चीजें चाहिए, इसके अलावा हम हर चीज के अंदर हम कमी ला सकते हैं। आप गौर करें तो हर चीज के अंदर हम कमी ला सकते हैं,
बस यही एहतियात करें।
सिर्फ दो चीजें हैं जिसमें हम कमी
ला सकते हैं। चावल में भी कमी लाने का मसला दो कि चावल
तो फिर आटे में इजाफा हो जाएगा, ये सब
ले। और जो क्योंकि कार्ब चीज होती है, अगर आप अपने हेल्थ को और वेल्थ को दोनों को मेंटेन करना चाहते हैं तो चावल की क्वांटिटी को रिड्यूस करें और बॉयल चावल खाएं, चावल की क्वांटिटी भी रिड्यूस करें और बॉयल राइस लें। लेकिन जिनको शुगर है वो इसमें मजीद एहतियातें करेंगे, और जिनको शुगर है वो जो रोटी है गंदुम है कार्ब है उसके अंदर, उससे एहतियात करें, मल्टीग्रेन रोटी खा लें, अच्छा फ़ायदा देती है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये चीज़ें जो नेसेसरी आटा और चावल उमूमन हमारे हर घर की बेसिक ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा 10 चीज़ें जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं,
एहतियात करें तो सब हो सकता है।
ऐसे मेरे यहाँ पे मेरे ख्याल से 10-15 साल हो गए चावल बॉयल ही होते हैं। चावल बिगाड़े हो चावल बनते ही नहीं है मेरे घर में।
क्या माए दावत
है उसमें अलग बात
है, बिरयानी वाले चावल बनेंगे फुलके भी नहीं बनेंगे। ये भी अजलता मेरे को याद आया कि चावल के मुख्तलिफ अकसाम है, एक चावल नॉर्मल जो हम घर में खाते हैं, एक चावल बिरयानी का अलग आता है जो थोड़ा बड़ा हुआ चावल आता है। तो अगर आप ये देख लिए कि भाई अगर इस चावल में गुजारा हो सकता है, जो चावल में गुजारा हो सकता है नॉर्मली पता भी नहीं चलता, अब ना पता है किसी को तो चावल चावल ही है।
ब्रांड्स की चीज़ें होती हैं कंपनी की, जो भी शरबत ले लें तो इसके रेट्स में बाकी वहाँ अच्छा रेट मिल जाता है क्योंकि ये लोग बल्क में खरीद।
जी हाँ मैं वही,
नॉर्मली जो दुकानदार इलाकों में होते हैं, कोई भी कंपनी वाला आता है तो उसको 3%, 4%, 5%, 8% देती है, लेकिन जो बड़े मार्ट्स वगैरह ले लेते हैं लोग 12-12% पर खरीदारी करते हैं, तो इनको ज्यादा वो मिलता
है, कंज्यूमर को फायदा
है। जी सर, इसमें दूसरी ये जो है जरूर कि दाल, चना और चावल और ये खुले मसाला जात, तो इसके लिए जिसके लिए आसानी हो वो होलसेल मार्केट आए, क्योंकि हमारी मार्केटों में पहले की बनिस्बत वही एक हुआ है कि आप कौन जाएगा घर बैठे मंगवा लें। यहाँ मैं मशवरा यही दूंगा कि वहाँ के रेट आज भी जो दुकान
होलसेल मार्केट
सस्ते हैं।
तो ये एक घर वाले को क्या मतलब वो, अच्छा होलसेल मार्केट का आपने मशवरा दिया
जी,
ये अगर रक्षे में जाता है
इसमें जो देखा
है ऐसा नहीं लगता कि आपको ट्रांसपोर्ट,
मैंने ये देखा है बिलखसूस जिन एरियाज में हम होते हैं चोड़िया बाजार में, तो बिलखसूस हमारे ओल्ड सिटी एरिया की और काफी हमारी इस्लामी बहनें मिलकर आती है दो तीन रक्षे के अंदर, ये भी हो देखा मैंने, और बाकायदा वो जब रक्षा लोड करके जाती है तो
मेले में जाकर झगड़ा वगैरह नहीं होता, कहते हैं ये मेरा
10-15 किलो की परचेजिंग हो जाती है उसमें चना दाल चावल, और ऐसा उसमें रक्षे का किराया निकल जाता है। और मैं फर्क बयान कर दूं कि जो मैं खुद भी देखता हूं कि जब मैं इलाके में कभी कभी दाल देखता हूं ना, तो दाल में बहुत बड़ा फर्क होता है, चनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, चावल में बहुत बड़ा फर्क होता है।
अब जिसका बजट है भाई साहब, इसको पता ही नहीं है मुझे बजट का क्या फिक्र है, वो हॉल में जाएगा एक साथ ही मिल जाएगा, मेरा ना टाइम वेस्ट है एक ही जगह पे,
मिडिल
हम तो मिडिल मिडिल कर रहे ना
मिडिल क्लास
जी। अच्छा भाई जिन
बजट का मसला है,
जिनकी बात कर रहा हूँ ये भी पता होगा कि आज टमाटर कितने का है, और जिनकी आप बात कर रहे हैं तो उसको पिछले 5 साल में अच्छा उसको बोले ना सर टमाटर महंगा हो गया है, कितने का सर 500 रुपए का हो गया है टमाटर, तो बोले पहले कितने का था, अच्छा महंगा हो गया है मुझे क्या पता महंगा हो गया है, उसको तो पहले ही होगा 600 का 500 हो गया होगा।
भाई साहब अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, ये टमाटर की जो से बात की है, आपको ठेले पे वही टमाटर होगा और जो आपको मॉल में टमाटर मिलेगा उसको उसका किराया देना
है। वो धूप में टमाटर रहता है जी, वो एसी में टमाटर रहता है ना, दोनों टमाटर की सेहत पे फर्क नहीं होगा
भाई साहब, वो टमाटर के लिए उसके ऊपर एक्सपेंसेस आए हैं, उसके शॉप का रेंट, आदमियों का खर्चा, और ठेले वाले के पास कुछ खर्चा नहीं है,
बत्ते बत्ते
जो मामूली खर्चे होंगे इसके, तो इस वजह से वहाँ सस्ता भी मिलेगा, क्वालिटी भी सेम होती है। अगर चेक करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है, एहतियात हर चीज में करनी है।
आप दोनों मिलकर तो लगता है कराची वालों को सब्जी मंडी भेजोगे हाईवे पर जाओ वहाँ से खरीद के ले आओ।
चीज हो रहा है ये आजकल, ये भी हो रहा है कि 4-5 दुकानें एक ही दुकानदार खरीद लेता है,
यही
और उसके अंदर ये चीजें फ्रूट वाली की दुकान हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, बहुत सारी, या मोबाइल की दुकान है, ये लाइन से दुकानें हैं
सारी।
पहली दुकान पे जाएगा ये रेट मिलेगा 600 रुपए किलो, दूसरी पे जाएगा बोलेगा 550 रुपए किलो, तीसरी पे जाएगा 500 रुपए किलो, देखता है माल तो इसका बहुत अच्छा है और 500 रुपए किलो दे रहा है, वो उससे लेके चला जाएगा, हालांकि वो चीज 400 रुपए की है, लेकिन लाइन से एक ही दुकानदार।
अब खरीदार कह रहे क्या भैया आप थोड़ा तो आप रिजल्ट भी तो लाओ ना, ये सब देख रहे दोनों पर करे क्या, हम लोग तुम्हारे सुन
बस चेक करना खरीदार मुझे क्या करना है। मिसाल के तौर पर ये चाहिए टेबल, तो मुझे पता है कि उसके ऊपर क्या लगा हुआ और क्या इसमें मटेरियल है। अब ये शीट मुझे पता है कि ये 4x8 की शीट कितने की मिलती है, हालांकि मेरा काम नहीं है, मालूमात रखते हैं, सारी सोशल मीडिया पे हर चीज आपको नजर आती है, कौन सी चीज किस तरह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कौन सी मशीनों की हो रही है, क्या कॉस्ट आ रही है, ये सोशल मीडिया आजकल सब बता रहा है, आपको हर चीज मिल जाएगी। अब ये शीट ना मेरा बिजनेस है ना कुछ, मुझे ये पता है कि 4x8 की शीट 11,000 रुपए की है, ये 1.5x1.5 की इसमें 12 पीस निकल आएंगे, इतने का पड़ेगा और इतने के ये मटेरियल पड़ेगा,
सामने को मजदूरी वजूरी लेगा नहीं लेगा,
ये मतलब इस तरह कोई एहतियात
कैलकुलेशन करके
एहतियात करके, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना, अब मेरे को देखना है कि मुझे जो चीज खरीदनी है ये मैन्युफैक्चरर इतने की है तो किसने इसको कितना प्रॉफिट देना चाहिए, या मैं लास्ट कंज्यूमर से खरीदूं जो कि सबसे ज्यादा नफा देते वो उनका नफा पहुंचा रहा है, क्या उसे लूं। पहले खरीदारी का मिजाज मैन्युफैक्चरर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर से होलसेलर, फिर रिटेलर, तो मैं चाहूंगा कि 2-3 प्रॉफिट मेरे उनके कम हो जाए, मैं उत्तर ले लूँ। एनजीओस भी तो लेती है ना ऐसा, कराची में पाकिस्तान में कितनी एनजीओस हैं जो कि ये सेम रेट में होलसेल के रेटों में माल बेचती हैं, वो 1 रुपया प्रॉफिट भी नहीं लेती, क्योंकि उन्होंने उनसे भी कमीशन परसेंटेज ली हुई होती है 12%, जिस तरह अब्दुल मजीद भाई ने कहा 12%, 15%, तो वो रिटेल से भी ज्यादा इनको।
एनजीओस वालों को भी यही हमारी खरीदारी का मशवरा देना चाहिए कि जब आपको पता है कि आपकी एक बल्क में अगर खरीदारी है तो आप कहीं रिटेल में जाकर या सेमी होलसेलर में, तो कहते होलसेलर के पास भी जाने के बजाय जो मेन किसी, अगर आपको मैन्युफैक्चरर मिला हुआ है या वो डायरेक्ट आपके पास जो प्रोडक्शन कर रहा है
फ्लोर मिल वाले से,
अगर डायरेक्ट प्रोडक्शन से आप माल उठा लेते हैं तो वो आपको क्यों नहीं देगा, आपका ट्रक 2 ट्रक का माल होगा तो आपको देंगे, आधे ट्रक का माल आपको एक बोरी खरीदे तो जा नहीं रहे, और एक बोरी खरीदे बंदा जाएगा ही क्यों, जाने जाने में इसका ट्रांसपोर्ट इसकी चीज़ को महंगी कर देगा। लेकिन इसकी जितनी भी एनजीओज हैं या जो भी इस तरह का बल्क में काम करते हैं, भले आप चंदे के माल से खरीद रहे हैं, अच्छा जिसने आपको चंदा दिया एतमाद तो उसने भी आप पर किया ना। आप अगर उसके चंदे को ही अगर आप उसको बचत के तौर पर ले लेंगे तो वही बचा हुआ चंदा किसी और नेकी के काम में खर्च आएगा, किसी भलाई के काम में खर्च आएगा। और जो चंदा देने वाले को जब पता चलेगा कि यार ये मतलब कि चीज़ को इतना सस्ता और इतना मतलब कस के लाते हैं और इतने अच्छे अंदाज से लाते हैं और इतना ज़ाया होने से बचाते हैं और जो बच जाए तो फिर उसका इस तरह एक अच्छा इस्तेमाल ये लाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि चंदा देने वाले का जब आप पर एतमाद बढ़ता है, डोनेशन वाले का जब आप पर एतमाद बढ़ता है, तो बेसिकली वो भी आपके साथ ज्वाइंट हो जाते हैं और उनका फाइन उनका मजीद डोनेशन भी आपके साथ ज्वाइंट हो जाता है। लेकिन उसके लिए ये है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी परचेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसमें उनको देखा करें, क्योंकि ये सप्लाई चेन दावत इस्लामी का भी एक शोबा है सप्लाई चेन का, कि जो चीज़ चाहिए होती है वो भी और जो ख़रीदना होता है वो भी। हमारे यहाँ दो दो तीन तीन कोटेशन लिए जाते हैं, हमारे यहाँ मतलब कि प्री ऑडिट सिस्टम हमारा अलग है, यानी दावत इस्लामी में प्री ऑडिट सिस्टम भी है कि भाई ख़रीदने से पहले पता चल जाए कि भाई आप क्यों ख़रीद रहे हैं, कितने खरीद, कोटेशन कितने कोटेशन है, तो पूरी कोटेशन के ऊपर डिस्कशन होती है, फिर माहिरीन के पास जाता है। आई नो कि देर इज़ अ बैरियर, लेकिन ये वो बैरियर हैं जो आपको मतलब कि आपको फ़ायदा देते हैं, करप्शन का रास्ता बंद करते हैं। जिन कंपनी वालों ने अपने पर परचेसर रखे हैं वो भी चाहें तो इस तरह की कोई चीज़, यानी एक ऐसा ईमानदार किस्म का शख्स जो बैरियर के तौर पर काम कर सकता हो, वो आपको महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो करप्शन बचा कर देगा ना वो उसकी सैलरी से बहुत ऊपर होगा, जिसका आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है। बस लोगों को होता है यार अभी पैसे आ ही रहे ना यार, कोई नहीं हम क्या कर सकते, वो इतना मतलब अच्छा। जिन्होंने इस तरह की मेंटेलिटी रखी, ये पिछले दिनों की मेरी कोई बिजनेस कम्युनिटी के साथ डिस्कशन हो रही थी और मेरा अपना भी इसमें एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इस तरह की मेंटेलिटी रखी ना यार चलो ना जो करता है करने दो, अपने को दो पैसे कमा कर दे रहा है ना, मैंने उनको फाइनली क्लोजिंग की तरफ जाते देखा है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें इनको दीमक बन रही होती, क्योंकि फिर वो जब सरफे नज़र कर रहे होते हैं ना तो फिर एक आदमी बेमान नहीं होता, फिर एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, तीसरे को देखकर चौथा बेमान होना शुरू हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी का ना होना ईमानदार को भी बाजों का बेमान कर देता है बदकिस्मती के साथ, इसलिए अकाउंटेबिलिटी कभी बंद ना करें, हमेशा अकाउंटेबिलिटी रखें। मैं नहीं कहता कि आपकी चोरी बंद हो जाएगी या आपका ये सब कुछ बंद हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है, मगर अकाउंटेबिलिटी से ये है कि अगर अल्लाह ना करे कोई चीज़ आपके साथ गलत हो रही होगी तो उसका फौरनली सद्देबाब हो जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, उसको आप रिकवर कर सकते हैं और आप आगे की चीज़ों को रोक सकते हैं। आप अगर आप नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली जिस भी लकड़ी को दीमक लगी अगर वो दीमक को साफ नहीं करेगा तो फाइनली तो वो बड़ी से मजबूत भी अगर वो लकड़ी होगी तो उसको तो वो तो ढांचा हो जाना है, उसने गिर जाना है, ख़त्म हो जाना है। तो ये बीमारियाँ होती हैं बाज़ अवकात करप्शन की जो इदारे में या लग जाते बाज़ अवकात हमारे घर के अंदर अल्लाह ना करे इस तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं हमारे मुलाजमीन, क्योंकि बात जैसे हमने मिडिल क्लास की बात की, इस तरह जो अपर क्लास या एलिट क्लास या सुपर एलिट क्लास कम्युनिटी होती है शायद उनको तो पता भी नहीं होता होगा कि कौन सी चीज़ कितने की है, क्या है और मिलती भी कहाँ पर है, क्योंकि वो जो चीज़ खरीदारी करने जाते हैं वहाँ बार्गेनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जो खरीदारियाँ जो नीचे की सतह पर हो रही होती हैं वहाँ पर चूँकि उनको पूछने का टाइम नहीं है, तो फिर बाज़ औक़ात आपका जो भी मुलाजिम खरीदारी के लिए जाता है जब उसको पता है कि मुझसे पूछा नहीं जाएगा, चाहे वो पेट्रोल भराने जाता है या आपकी ग्रोसरी लेने के लिए जाता है, क्योंकि बड़े से बड़ी फैमिली भी अनाज ही खाती है ना क्या खाती है, मगर जब आप पूछेंगे नहीं और आपको मालूम नहीं होगा, बसा औकात कितनी एलिट क्लास हो सुपर एलिट क्लास हो, औरत का नेचर बाजों का सुपर एलिट है एलिट नहीं बनता इस मामले के अंदर, वो बाल की खाल खींचती रहती है कितने का लाया, अच्छा वो भी ऐसे पूछती रहती उसको भी नहीं पता था कि बाहर है कितने का, तो वो उसको भी बेवकूफ़ बनाने में बाजों का कामयाब हो जाता है। लेकिन ऐसा ना समझें कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो आपको यहाँ पर केयर करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अमीरी में भी इत्तेदाल है, गरीबी में भी इत्तेदाल है और इबादत में भी इत्तेदाल है। ये जो म्याना रवी है ना ये हर जगह पर है, आप अपनी अक्ल को जागता रखें। दरिया से अगर प्याले भर भर कर निकालना को शुरू कर देना तो दरिया को शुरू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर एक दिन आएगा ज़रूर कि दरिया भी बोलेगा यार मेरा पानी किधर गया, फिर जब ज़मीन आना शुरू हो जाएगी तो ये ना क्यों निकाले कोई यार, आपका पैसा को क्यों खा जाएगा, आपके साथ को बेईमानी क्यों करेगा, कोई परचेजर आपके साथ परचेजिंग के अंदर डी ऑनेस्टी क्यों दिखाएगा? और आप ये सोच ना रखेंगे यार जो चलता है चलने दो, हम चलो ना यार, क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्यों फर्क नहीं पड़ता? वो अपनी कब्र आखिरत को दांव पे लगा रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता? बेमानों को तो बिल्कुल घर तक पहुंचाना चाहिए। बेमानों को कभी भी अपने पास जगह मत दीजिएगा। जो बेमान है उसको कभी अपने पास जगह मत दीजिएगा, ये याद रख लें। हदीस पाक में आता है मोमिन एक सुबह से दो बार नहीं रसा जाता। मैंने इसकी शरह इतनी खूबसूरत शुरुआत मैंने इसकी पढ़ी है, मुख्तलिफ शारहीन ने मुख्तलिफ शुरुआत लिखी है, लेकिन एक शरह में उनकी पढ़ रहा था सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो खजान इरफान की जो तफसीर इन्होंने लिखी है, क्या उन्होंने तफसीर लिखी, क्या शरह लिखी थी। यानी अगर बंदा इस हदीस पर अमल, भाई एक शख्स ने आपको धोखा दे दिया, अब दोबारा तो भरोसा कर क्यों रहे हैं? ये तो गोया कि अगर आपको फिर धोखा हुआ तो यहाँ पर आप खुद को ही कसूरवा ठहराए ना कि उसको, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मना फरमा दिया, क्या बचो? तो जहाँ धोखा देने वाला धोखा देने में अपनी कोई महारत रखता है, इस तरह काम लेने वाले को अपने काम लेने में भी महारत रखनी चाहिए। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मजमूई तौर पर इसको देखेंगे तो आज हमारा ये जो प्रोग्राम रहा, ये खरीदारी के साथ साथ आपकी घर गृहस्थी के ताल्लुक से, आपकी दीगर जो आप चाहे ऑफिस में काम करते हैं या आप घर के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं या पर्सनल कोई चीज़ खरीदते हैं, तो बिल्कुल आप इसके अंदर लें और बार्गेनिंग करने की आदत रखें। बार्गेनिंग करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित हैं, जो हज पर जाए तो वहाँ पर अफजल ये कि बार्गेनिंग ना करें, क्योंकि वो एक खर्च ही रहा है खुदा का एक तरह सा बन जाता है। तो अगर आप बार्गेनिंग करें, थोड़ा सा कसें, ये ना करें, कसने की आदत रखें, वैसे जो मांगा वो दे दिया ऐसा ना। अच्छा, ये भी एक अजीब रोना है कि जो गरीब ठेले वाले रक्शे वाले गरीब लोगों से लोग बार्गेनिंग करेंगे, और वो जो अच्छा जो बेची मतलब के 200-300 रुपए की राय, वो कमा कमा कर भी बस 20-25-30 रुपए 50 रुपए कमा लेगा, और जो बेच आपको चीज 10-20 लाख रुपए की राय, 40-40 लाख रुपए की राय, उससे कोई बार्गेनिंग कर ही नहीं रहा, कितने की है? सर ये आपको 4 मिलियन की पड़ेगी। अच्छा 4 मिलियन की, अच्छा आप वो बार्गेनिंग करे कैसे? वो अपनी औकात देख रहा है, 4 मिलियन की औकात है तो ले लेगा। बोले यार मतलब वो 4 लाख रुपए को 40 लाख रुपए को बोलने के लिए तैयार नहीं है कि इसको 39 कर दो, बोलेगा तो उसका अपना वजन खत्म हो जाएगा, जेब भले खत्म होती हो कोई मसला नहीं है। यानी जहां अच्छा उनके अपने प्रॉफिट भी ज्यादा होते हैं, ब्रांड बेचते हैं, मैं इसी खरीदारी करने ना करने पे कोई कलाम नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जहां बार्गेनिंग करने की वाकई जरूरत थी वहां तो आपने बार्गेनिंग की नहीं। अब जो बेचारा कमाई रोज के 200-250-300 रुपए कमा रहा है, 400-500 रुपए कमा रहा है सब्जी बेचकर और ये अपने फल फ्रूट बेचकर और रक्षा चलाकर, टैक्स इतने ज्यादा ले रहे हो, अब रक्षे वाला कितना ज्यादा ले लेगा आपसे, टैक्सी वाला कितना ज्यादा ले लेगा, ये टमाटर आलू बेचने वाला जो रेड़ी लगाकर बैठा हुआ है आपसे कितना ज्यादा ले लेगा, मैं तो ये समझ रहा होता हूं। और जो ज्यादा ले रहा है वहां कम कराने की फुर्सत नहीं है, बल्कि मिन्नत समझ कर यार बना दो ना या ले लो ना या कर दो ना, ये कर रहे होते हैं। ये नेचर हर जगह नहीं है, हर एक का नहीं है, मगर है कि नहीं है उसका फैसला आप कर लीजिए। अल्लाह पाक हम सबको अकल सलीम अता फरमाएं, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, मदनी चैनल देखते रहें, नमाज की पाबंदी जरूर करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जजरी बात की दुनिया।